सिद्धे ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् जेणिहकसाय पाहुण मणेयणय मुज्जलम् मणन्तथम् गाहाहि विवरियम् तम् गुणहर भडारयम् वंदे। यह श्री बीरसेन आचार्य रचित जयदोला टीका है जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टार तथा यति उषव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। द्वितीय पुस्तक जो द्वितीय अर्थाधिकार प्रकृति विभक्ति, उसमें उत्तर प्रकृति विभक्ति देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 128 पर आ गए। 128 अंतर की बात चल रही है यहाँ पर। एक जीव की अपेक्षा जो अंतर है वो प्रकृतियों की, तो उसमें मार्गणाओं की बात चल रही है और अभी हम वेद मार्गणा को पढ़ने जा रहे हैं। 128 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेदी जीवों में अलग अलग मार्गणा की अपेक्षा उन जीवों में कौन सी प्रकृतियों का अंतर बता रहे हैं। अभी काल नहीं बताना है, अभी अंतर बताना है। मैंने पहले उसके सत्व था, फिर सत्व नहीं था और फिर दोबारा हो गया, उसको कहेंगे अंतर। यहाँ सभी जगह सत्ता की ही बात चल रही है, उदय की बात नहीं हो रही। एक जीव की अपेक्षा, अभी तक हमने एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व देखा, काल देखा और अभी अंतर देख रहे हैं। तो उसमें नाना जीवों की अपेक्षा अंतर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, हमेशा ही वो सत्ता वाले जीव रहेगी, बिना सत्ता वाले भी होंगे, अंतर नहीं होगा। अब यहाँ कहते हैं देखो, एक जीव की अपेक्षा भी कौन सी प्रकृतियों में अंतर नहीं होता है? एक मिथ्या, तो क्योंकि उसका क्षय होने के बाद फिर दोबारा हो जाए ऐसा नहीं होता। फिर 12 कषाय और 9 कषाय, अनंतानुबंधी में अंतर हो सकता है क्योंकि विषय योजना के बाद फिर दोबारा वो मिथ्यात्व में जाता है, तो फिर अनंतानुबंधी की सत्ता पाई जाती है। ऐसे सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व उद्वेलना होने के पश्चात उसकी सत्ता नष्ट हो जाती है, दोबारा सम्यक तो प्राप्त करता है तो फिर उसका सत्व हो जाता है। इस तरह से उसका अंतर घटित हो सकता है तीन प्रकृतियों, तीन ये दो और वो चार, इस तरह से 6 प्रकृतियों में अंतर घटित होता है, 22 में नहीं होता। अब स्त्री वेदियों में हम देख रहे हैं, स्त्री वेदी जीवों में सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य अंतर काल एक समय। ये जघन्य अंतर कहीं पर भी घटित होता है वो कैसे घटित होता है? पहले सत्ता थी, फिर नहीं है और फिर दोबारा सत्ता हो गई। हाँ, उद्वेलना कर रहा है, बहुत अच्छा, और साथ साथ उपशम सम्यक्त्व के सन्मुख है, करण लब्धि में है। अब उद्वेलना, उसी समय उद्वेलना पूरी हो गई, एक समय के लिए मिथ्यात्व में रहा और दूसरे समय में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, औपशमिक सम्यक्त्व होगा वहां। तो उसके एक समय के लिए सत्ता नहीं थी तो एक समय का अंतर घटित होता है, ये तो बात हमने पहले भी देखी थी। और अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य अंतर काल अंतर्मूर्त है और सम्यक्त्व तथा सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण। ये अपनी स्थिति कितनी होगी? स्त्री वेद का अपनी स्त्री वेदी की स्थिति कितनी है? पृथक्व सौपल्य, पृथक्व सौपल्य हमने देखा या सौपल्य पृथक्व ऐसा हमने देखा। श्रीवेद चलता रहे तो ये सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का अंतरकाल पूछा है। अनंतानुबंधी का अंतरकाल ऐसा घटित नहीं होगा वहां पर,
अनंतानुबंधी का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 55 पल्ले। अनंतानुबंधी का जो अंतरकाल है, अनंतानुबंधी का अंतरकाल कैसे घटित होता है? स्त्री वेद के साथ अनंतानुबंधी का अंतरकाल, बोलो। यानी उस एक पर्याय को ही लेना है यहाँ पर कि वहां स्त्री अभी ये देवी उत्पन्न हुई 55 पल्ले की आयु वाली। हाँ, जन्म से तो वहां कोई समय तो हो ही नहीं सकता, तो उसने समय दर्शन प्राप्त किया और भी संयोजना की और सम्यक्त्व के साथ पूरी आयु बिताई और अंत में जाकर वो फिर मिथ्यात्व में गई, तो अनंतानुबंधी का सत्व हो गया, अंतर घटित हुआ ना। पहले उसने संयोजना की तो अंतर शुरू हुआ और जब मिथ्यात्व में गए तब अंतर समाप्त हुआ। 55 पल देवी की उत्कृष्ट आयु। कुछ कम ये इसलिए कि समय को प्राप्त करने और विसंयोजना के लिए जितना समय लगेगा वो पहले और अंत का मिथ्यात्व में जाने वाला वो अंत में वो भी घटित कर दिया, कम कर दिया। इसलिए कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण कहा पहले में तो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व में, क्योंकि सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के लिए स्त्री वेद कायम रहे और अंतर घटित करना है, तो वहां कैसे अंतर घटित किया था? उत्कृष्ट अंतर कैसा घटित होगा? सम्यक प्रकृति के लिए उत्कृष्ट अंतर कैसा कि उसने उद्वेलना की, स्त्री पर्याय में आने पर एक समय के बाद उद्वेलना पूरी हुई तो अंतर चालू हो गया और जाकर अंत में उसने सम्यक को प्राप्त किया, औपशमिक सम्यक को प्राप्त हुआ उसको, तो उसका उत्कृष्ट अंतर, यानी वो स्त्री वेद में ही रहा, एक ही भाव नहीं लेना वहां, स्त्रीवेद लगातार, और फिर जब स्त्रीवेद की जो अंतिम स्थिति है उससे पहले पहले उसको सम्यक तो प्राप्त हुआ। अनंतानुबंधी के जो अंतर के लिए सम्यक तो में रखना उसको, और स्त्रीवेद के साथ सम्यक तो चालू रहे तो दो भाव एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि उसको दूसरा भाव स्त्रीवेद का नहीं होगा, परंतु यह मिथ्यात्व है, उद्वेलना के बाद उसका स्त्रीवेद चालू रहे, मिथ्यात्व दशा है, तो अधिक से अधिक 100 पल्ले पृथक्व होगा उसे, 100 पृथक्व पल्ले या पृथक्व 100 पल्ले कहीं कहीं से भी कहो उसको। देवियों की अधिक से अधिक 55 पल्ले की आयु है, ये जो 16वें स्वर्ग के देव लेके जाते हैं उनकी वो तो बड़ी आयु वाली देवियां होती है, उनके उत्पन्न तो नीचे होती है पहले दूसरे स्वर्ग, क्योंकि उत्पन्न होने का तो नीचे का ही है उनकी और फिर वो वहां चली जाती है। एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, और अभी नीचे की देवियों की तो आयु तो कुछ पल्ले है ना, अभी होगी 5 पल्ले अधिक से अधिक, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले के एक सागर होता। तभी सौधर्म इंद्र बेचारे कहेंगे ना उसको वो कितनी वो 10 कोड़ा कोड़ी में कितने 5-5 पल्ले वाले कितनी इंद्राणियां हो जाएगी संख्यात होती है, असंख्यात नहीं होती। एट ए टाइम कितने हैं वो तो सैकड़ों हजारों उनके, क्योंकि उनके जो अलग अलग होते हैं ना, कि एक देवी है वो पट्ट देवी जिसको कहेंगे, फिर उसके अन्य अन्य उनके जो कुछ गणिकाएं वगैरह होती है, नहीं संख्या थी होगी। ये हमने वहां बताया था ना मंगलायतन में, वो स्टेज पर बताया था पंडित ने, असंख्यात होती है, हमने बोला असंख्यात नहीं होती संख्यात होगी। मंगलायतन के पंच कल्याणक में किसी ने बोला था, अभी नाम लेने के से क्या है, अनंतानुबंधी का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 55 पल्ले हैं तथा शेष प्रकृतियों का अंतरकाल नहीं है। हमने देखा था शेष 22 प्रकृतियों में कहीं पर भी उनका अंतर होता नहीं है, क्योंकि एक बार क्षय होने के बाद, यानी उनकी सत्ता कम नष्ट होती है क्षय होने पर, अनंतानुबंधी की सत्ता कब नष्ट होती है? विसंयोजन होने पर। परंतु फिर वहां दोबारा मिथ्यात्व में उसकी संयोजना हो जाती है। ऐसे सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता कब नष्ट होती है? तो उद्वेलना होने पर या क्षय होने पर। तो क्षय होने का सवाल नहीं, वहां अंतर घटित नहीं होगा। तो उद्वेलना के बाद फिर दोबारा सम्यक तो प्राप्त होता है तो उसकी सत्ता फिर बन जाती है, तो उसका अंतर घटित होता है। इन छह प्रकृतियों में ही अंतर होगा, अन्य में नहीं। अब पुरुष वेदियों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का अंतरकाल कितना है? जघन्य अंतरकाल एक समय, ये भी पुरुष वेद में आया। एक समय के बाद उद्वेलना पूरी हुई और फिर जाकर अंत में उसके फिर समय को प्राप्त किया। ये अंतरकाल एक समय कैसा घटित हो गया? दूसरे समय में उसने समय को प्राप्त किया। और उत्कृष्ट अगर अंतर घटित करना है तो पुरुष वेद मिथ्यात्व अवस्था में चलता रहा उसका। तो उत्कृष्ट अंतरकाल सौ पृथक्त्व सागर है। पहले हमने कितना देखा था? सौ पृथक्त्व पल्ल्य, और यहाँ सौ पृथक्त्व सागर। वहां अपनी स्थिति इतना ही लिखा है, तो अपनी स्थिति वहां कितनी थी? तो सौ पल्ल्य, सौ पृथक्त्व पल्ल्य। ऊपर जो स्त्री वेदियों में लिखा था पल्ल्य, अब यहाँ सौ पृथक्त्व सागर। तथा अनंतानुबंधी चतुष्क का अंतरकाल ओघ के समान है। ओघ में कितना अंतरकाल देखा था हमने? अनंतानुबंधी का अंतरकाल ओघ के समान है। अब जब हमने स्त्री वेदियों में कितना देखा था? 55 पल्ल्य। अब यहाँ कितना लिखा? हाँ, जगन्य की बात नहीं, उत्कृष्ट की। उत्कृष्ट अंतर कितना? अंतर अनंत काल होगा ही नहीं। ये तो अनंत काल कैसे होगा? पुरुष वेद चालू रखना चाहिए और वापस उसमें आना चाहिए। नहीं घटित होगा अर्ध पुद्गल परावर्तन में, उसका पुरुष वेद कायम नहीं रहेगा। पुरुष वेद कायम रहना चाहिए तभी अंतर घटित करना है। यानी
पुरुष वेद दोबारा मिलना चाहिए क्या?
पुरुष वेद कायम रहे और उसको अभी मिथ्यात्व में जाना चाहिए, यानी उसका सम्यक तो चालू रखना चाहिए, सम्यक तो बना रहे। हाँ, वेदक सम्यक तो बना रहे। 132 सागर हमने देखा था, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व में आने पर भी अनंतानुबंधी का सत्व नहीं होता है उसमें, यानी 66 सागर तक रहा, फिर सम्यक मिथ्यात्व में आया और फिर 66 सागर। देखो ओघ निकालना, स्त्री वेदी में ऐसा क्यों नहीं हुआ था लक्ष्मी बेन? हाँ, क्योंकि अन्य भूमि चला जाएगा तो पुरुष वेद हो जाएगा, परंतु ये पुरुष वेदी है तो उसका सम्यक तो होने पर भी पुरुष वेद चालू रहता है। 123 पेज पर देखना, ओघ में हमने देखा था अंतर अनुगम, तो उसमें अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 132 साल। कुछ कम इसलिए कहा था, एक पहला जो 66 सागर है उसमें एक अंतर्मूर्त तीसरे गुणस्थान का कम किया, और दूसरी बार 66 सागर लिए थे उसमें अंतर्मूर्त क्यों घटाया? कृतकृत्य के साथ वो 66 सागर पूरा होता है। यदि हम उसको कृतकृत्य करेंगे तो अनंतानुबंधी की संयोजना होगी नहीं, उसको मिथ्यात्व में जाना है, इसलिए वहां का अंतर्मूर्त एक घटाना होगा। यानी वो शायिक नहीं कर सकता, वो बात नहीं है, परंतु हमें वो अंतर घटित करना है उत्कृष्ट, इसलिए। अब आगे शेष प्रकृतियों का अंतरकाल नहीं है। अब नपुंसक वेदी जीवों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का अंतरकाल ओघ के समान है। कितना है जगन्य? कितना है जगन्य? एक समय और उत्कृष्ट तैतीस सागर क्यों लिया? अभी कहीं पर जाने दो, वो तो अर्धपुद्गल परावर्तन घटित होगा कि नहीं होगा नपुसक वेद में? देखो निकालो, ओग में निकालो। नीचे नीचे, हाँ कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन है, एक जो नपुसक रह सकता है, यानी उसमें कुछ कम कर देना। अंतिम भाव में उसको नपुसक वेद रखना कि नहीं रखना? क्यों नहीं रखना? नहीं, नपुसक वेद के साथ मोक्ष जा सकता है। श्रीवेद भाववेद की अपेक्षा है, जैसे हमने तिर्यंश गति के लिए अंतिम भाव तिर्यंश का नहीं हो सकता है, अंतिम भाव में मनुष्य बनाया, परंतु नपुसक वेद वाले तीनों वेद वालों को मोक्ष है। नपुसक वेदी जीवों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का अंतर काल इन दोनों में, क्योंकि उद्वेलना कर दी है, एक बार सम्यक तो होकर उद्वेलना कर दी है, अब उसका वो नपुसक वेद में ही उसने उद्वेलना पूरी हो गई उसकी, और अभी वो नपुसक वेदी रहा भले किसी भी गति में जाए, अभी देव में तो नहीं जाएगा, तो एक केंद्रियों में मैक्सिमम काल उसने बिताया और अर्धपुद्गल परिवर्तन के अंत में मनुष्य हुआ, वो भी भले हम नपुसक वेदी लेते क्योंकि हमको अंतर्घटित करना है ना, और जब उसने सम्यक को प्राप्त कर लिया तब तक उसको नपुसक वेद सहित सम्यक प्रकृति का अंतर चल रहा है, जब सम्यक को प्राप्त करेगा यानी अंत में उतना ही छोड़ना है, सम्यक संयम और क्षपक श्रेणी उतना घटाना अर्धपुद्गल परावर्तन में, कुछ कम। तथा अनंतानुबंधी चतुष्क का सातवीं पृथ्वी के समान है। देखो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व में अंतर काल में, तो मिथ्यात्व में बड़े से बड़ा काल गुजारना है अंतर के लिए, और अनंतानुबंधी के लिए अंतर के लिए विषय योजना करने के बाद वो सम्यक सहित वो बड़े से बड़ा काल बिताना है। जरूरी नहीं है, नपुसक वेद में आया है, उद्वेलना करते करते ही आया है। हाँ, अर्धपुद्गल परावर्तन में पल्ले का संख्या तो भाग भी कम करना है, क्यों? क्योंकि सम्यक को प्राप्त करने के बाद उद्वेलना होने के लिए कितने उतना काल लगेगा, तो उतना भी कम करना और अंत में अंतर्मूर्त भी कम करना।
कुछ कम नहीं आएगा?
कौन सा? हाँ वो सभी कुछ कम है, क्योंकि वो तो अनंत काल है और ये तो गिने असंख्यात समय, भले वर्षों में गिनेंगे तो असंख्यात वर्ष है, फिर भी वो कुछ नहीं उसके सामने, वो अनंत काल है, उसके सामने ये कुछ नहीं है। यानी वो नपुसक वेद में ही उसने सम्यक प्राप्त करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, जब उद्वेलना करते करते अंत समय आया तब वो नपुसक वेदी हुआ, ऐसा भी ले सकते, परंतु अर्धपुद्गल परावर्तन में से उसको कम करना है, उस काल को गिनते समय वो पल्ले के असंख्यात भाग हमको गिनना है। तथा अनंतानुबंधी चतुष्क का सातवीं पृथ्वी के समान है, क्यों? नपुसक वेद सहित है वहां पर, अभी एक केंद्रियों में वहां तो कोई ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि विसंयोजन वाला वहां जाता नहीं है और फिर वहां अंतर्घटित नहीं होता, क्योंकि अनंतानुबंधी के अंतर में उसका सम्यक तो बना रहे ये कंडीशन, और ये नपुसक वेदी वाला है, तो नपुसक वेदी वाला मनुष्य तिर्यंश लेंगे तो पूर्व कोटि पृथक अधिक से अधिक, क्योंकि भोग भूमि वाला भी नहीं ले सकते, तो यहाँ सातवें नरक का जीव लेगा, तो तैतीस सागर वाला है तो सातवें नरक में जाने के बाद सम्यक तो प्राप्त कर लिया, फिर विसंयोजना की, विसंयोजना करके सम्यक के साथ पूरे तैतीस सागर में कुछ कम काल तक रहा और फिर मिथ्यात्व में आया, तो बाद में जो कुछ वो कम करना उसमें से कुछ कम में उतना ले लिया, शेष प्रकृतियों का अंतरकाल नहीं है। असंयतों के नपुसक वेदियों के समान अंतरकाल कहना चाहिए। जैसे असंयत रहता है, असंयत होते हुए उसका यानी संयत में से असंयत में आया है और वहां अर्धपुद्गल परार्थ में कुछ कम उसका काल व्यतीत करना है। तथा चक्षुदर्शनी जीवों के त्रस पर्याप्तकों के समान अंतरकाल कहना चाहिए, क्योंकि चक्षुदर्शनी कौन है? चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो वहां त्रस पर्याप्त जीवों का जो है स्थिति उतनी वहां कह सकते विशेषार्थ। जिस प्रकार ओघ में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य अंतरकाल लिख आए हैं, उसी प्रकार तीनों वेद वालों के घटित कर लेना चाहिए। यानी वो एक समय होता है। स्त्री वेदी की उत्कृष्ट काय स्थिति सौ पल्य पृथक्व है, यानी स्त्री वेद में रहने का उत्कृष्ट काल। वह भले कितने भी हो, स्त्री वेद चालू रहे तो उसका अधिक से अधिक काल सौ पल्य पृथक्व है। कभी सौ पृथक्व पल्य कहते हैं, एक्चुअली पृथक्व सौ पल्य हमारे कहने के, हमने 800 पल्य ऐसा कहेंगे हम। तो कैसे भी हमें समझना है इसको। तथा इतने काल तक वह मिथ्यात्व गुणस्थान में भी रह सकता है, अतः इसमें से उद्वेलना काल के कम कर देने पर सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर प्राप्त होता है। पर इतनी विशेषता है कि स्त्री वेद का काल प्रारंभ होते समय मिथ्यात्व में ले जाना चाहिए और स्त्री वेद का काल समाप्त होने के अंत में उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति कराना चाहिए। ये उपशम सम्यक्त्व की कंडीशन क्यों डाली? क्योंकि वो उसका अंतर चल रहा है ना, तो अंतर उसका यानी वो सत्ता में है नहीं है। जब सत्ता में नहीं है, उद्वेलना पूरी हुई है, तो प्रथम उपशम ही प्राप्त करेगा। क्योंकि जिसके सत्ता में वो दो प्रकृति है और उसका वेदक योग्य काल चल रहा हो, तभी उसके वेदक सम्यक्त हो सकता है। यहाँ अंतर कैसे घटित होगा? उन दोनों की सत्ता नष्ट हुई तो अंतर चालू हो गया, इसलिए अब जो प्राप्त करेगा तो उपशम ही सम्यक्त ही प्राप्त करेगा। कोई एक जीव 55 पल्ले की आयु वाली देवी हुआ और वहां पर्याप्त होकर वेदक सम्यक्त को प्राप्त करके, क्योंकि सम्यक्त के साथ तो उत्पन्न नहीं होता कोई, वहां देवी है ना, तो अंतर्मूर्त वहां गया पर्याप्त होकर, वो जितना आवश्यक है उतना काल वहां बिताना। अंतर्मूर्त में पर्याप्त हुआ, फिर अंतर्मूर्त में विशुद्ध हुआ, फिर अंतर्मूर्त में सम्यक्त प्राप्त किया, तो वेदक सम्यक्त को प्राप्त करके उसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विषय योजना कर दी। पुनः भव के अंत में मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त हुआ, यानी पूरा अधिक से अधिक काल सम्यक्त्व में बिताया, तो विषय योजना की थी तो ऐसा ही रहा। मिथ्यात्व में जाने के बाद फिर अनंतानुबंधी का बंद हुआ और नया सत्व प्रारंभ हुआ। उसके अनंतानुबंधी का कुछ कम 55 पल्य उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। अब पुरुष वेदी जीव की काय स्थिति 100 सागर पृथक है। अतः वहां उस अपेक्षा से सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर कहना चाहिए, यानी इतना काल वो मिथ्यात्व में बिताएगा। तथा पुरुष वेदी के अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल जिस प्रकार ओग में घटित करके लिखाए हैं, जघन्य में हमने अंतर्मूर्त देखा था और उत्कृष्ट में कुछ कम है 132 साल, उसी प्रकार यहां जानना चाहिए। तथा सातवीं पृथ्वी में नारकी के जिस प्रकार अनंतानुबंधी का उत्कृष्ट अंतरकाल लिखाए हैं, उसी प्रकार नपुसक वेदी के जानना चाहिए और इनके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतरकाल ओग के समान घटित कर लेना है, क्योंकि कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक एक जीव नपुसक रह सकता है। स्त्री रहे देवी तिर्यंचनी और मनुष्यनी, तीनों की लेके 100 पल्य पृथक, तीन भव नहीं अनेक भव हो सकेंगे। पर स्त्री वेद स्त्री वेद स्त्री वेद कायम रहे, स्त्री ही बनी रहे, मनुष्य नहीं हुई, तिर्यंच नहीं हुई, देवी हुई। अभी मिथ्या तो अवस्था में तो तीनों में घूमती रही, तो अधिक से अधिक कितना काल तक स्त्री वेदी ही रहेगा, बाद में वो वेद बदल जाएगा। इसको कहते हैं उसकी उत्कृष्ट स्थिति। यानी कोई पुरुष है और मिथ्यात्व में है, तो भी अधिक से अधिक कितने काल तक पुरुष रहेगा, तो सौ पृथक सागर है। हमने बचपन में सुना था इसे, वो शास्त्र की बातें घर में कुछ पता है कि हमको स्त्री स्त्री वेद का स्त्रीलिंग का छेद करना है। छेद करना ही नहीं, सम्यक तो प्राप्ति के लिए ऐसा कहते हैं, मगर उनको लगता है वो स्त्री से पुरुष हो जाए तो हो जाएगा, काम हो जाए, ऐसा थोड़ी है। मिथ्यात्व का छेद करना ऐसा कोई नहीं कहता था। लेशा मार्गणा के अनुवाद से छह लेशाओं में, अभी लेशा का प्रकरण चलेगा, छह लेशाओं में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य अंतर काल एक समय, वो तो घटित होता है। लेशा वही बनी रहे, उद्वेलना उस लेशा में आने पर उद्वेलना समाप्त हो गई और फिर उस सम्यक प्राप्ति के सम्मुख है और उसने सम्यक प्राप्त कर लिया, तो अंतर एक समय का घटित होता है। तथा अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य अंतर काल अंतर्मुहूर्त है, हमेशा जैसे हम घटित करते हैं, विषय योजना कर दी और अंतर्मुहूर्त में मिथ्यात्व में गया। तथा उक्त सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट अंतरकाल कृष्ण लेशा में कुछ कम 33 सागर, जब सम्यक प्रकृति में हम उत्कृष्ट अंतरकाल देखेंगे तो मिथ्यात्व में उतना बिताएगा। शुरू शुरू में सम्यक तो प्राप्त करेगा नहीं, शुरू शुरू में उसको ये सम्यक प्रकृति लेना है ना, इन्हें उद्वेलना करते करते वहां आया है, उद्वेलना समाप्त होगी नरक में, सातवें नरक में जाने पर, वहां तो कृष्ण लेशा है और फिर उसने अंत में समय को प्राप्त किया, फिर वो मिथ्यात्व में भी गया, वो आगे का काल कम करना उसने, इसलिए कुछ कम 33 सागर। नील लेशा में कुछ कम 17 सागर, कपोत लेशा में कुछ कम 7 सागर, शुक्ल लेशा में कुछ कम 21 सागर, कहाँ का लिया है जी, नवे ग्रह वेग का। पीत लेशा में साधिक 2 सागर, शुक्ल के बाद पीत लिया, साधिक 2 सागर वाला कहाँ का लेना, सौदर में ईशा में। और पद्म लेशा में साधिक 18 सागर है। में साधिक देखो ये क्या विशेषता हुई, शुक्ल में पीत में और पद्म में, कुछ खास बात ख्याल में आई बोलो, मैंने इसमें क्या खास उसकी बात नहीं है, ये स्टेटमेंट में कुछ खास विशेषता क्या, हाँ और बहुत अच्छा, शुक्ल लेशा में कुछ कम लिया और यहाँ पर कुछ पीत और पद्म में कुछ अधिक लिया, वो तो उसकी ही भी रहेगी, शुक्ल वाले की भी रहेगी, शुक्ल वाले की भी रहेगी ना,
वो जो आधा आधा ही सागर होती है ना, आधा
प्रश्न ऐसा है, शुक्ल में कुछ कम क्यों बताया, इसका उत्तर क्या है?
देखो ऐसा है, वहाँ की
वो तुरंत मिथ्या पता
नहीं आता। नहीं नहीं वैसी बात नहीं है। देखो शुक्ल लेशा वाला जो है, जब हम सम्यक प्रकृति की जब गठित करते हैं तो उद्वेलना का पश्चात वाला काल लेना है, तो उसकी उद्वेलना तो उद्वेलना समाप्त होने का काल लेना है। तो शुक्ल वहां जाने वाला भी पहले अंतर मुहूर्त में उसकी शुक्ल लेशा थी, लास्ट में यानी मनुष्य जो है द्रव्यलिंगी मुनि है, अंतिम अंतर मुहूर्त में तो शुक्ल लेशा में मरकर वो वहां जाएंगे, तो उस शुक्ल लेशा में आते ही उद्वेलना समाप्त हुई उसकी। मिथ्यात्व का काल चल रहा है, पहले भी मिथ्यात्व ही थे, मिथ्यात्व तो चालू ही था ना उनका, वो पल्ले के असंख्यात भाग काल तक तो मिथ्यात्व ही चल रहा था हम मान लेते हैं, और वहां उनकी उद्वेलना पूरी हुई और फिर वहाँ उस लेशा चल रही, वहाँ तो शुक्ल लेशा ही है कायम। नहीं मगर ये जो साधिक जो है ना, साधिक का प्रमाण कैसा लेते हैं, साधिक में कितना साधिक लेना है, सब मिलकर साधिक ही हो जाएगा। यहाँ जो साधिक आयु होती है वैसी साधिक आयु 18 सागर के ऊपर साधिक पना नहीं लगता, शतार सहस्रार तक ये साधिक वाली जो आयु होती है, जिसको कहते हैं घातायुष्क होने के बाद जो साधिक होती है वो वहां तक के जीवों के ही होती है, ऊपर के जीवों में ये साधिक आयु नहीं होती, घातायुष्क वहां नहीं पाए जाते, ग्रैवयकों में घातायुष्क नहीं पाए जाते। ग्रैवयकों की क्या बात है, शतार सहस्रार के ऊपर घातायुष्क वाले नहीं होते, इसलिए ये साधिक में से वो पहले वाला अंतर्मूर्त या लास्ट वाला अंतर्मूर्त घटा दो तो भी वो साधिक ही रहता है, इसलिए पीत और पद्म में ये साधिक वाली बात होती है, और शुक्ल में ये 31 से साधिक वाला नहीं होगा। ये जो साधिक दो सागर है या साधिक जितने भी 18 सागर है उसमें भी कुछ कम होने ही वाला है, परंतु कुछ कम करके भी वो 18 सागर से साधिक ही रहेगा। जो हम यहाँ प्रोपोर्शन कम करेंगे कि उस लेशा में आया, एक समय के बाद उद्वेलना पूरी हुई और अंत में जाकर उसने सम्यक तो प्राप्त किया, तो अंत का जो हम घटाना चाहते हैं और पहला एक समय घटाना चाहते हैं वो तो वहां भी घटेगा साधिक में, परंतु वो घटकर भी वो साधिक ही रहेगा ना। जैसे सागर के ऊपर पल्ले ज्यादा है या इस आधा सागर ज्यादा है, आधा सागर में अंतर्मूर्त कम इतना ज्यादा हो सकता है, फिर भी वो सब मिलकर साधिक ही रहेगा, इसलिए यहाँ साधिक लिखा और वहां कुछ कम लिखा। घातायुष्क होकर वो साधिक आयु ऊपर नहीं पाई जाती, ये कारण है। शेष प्रकृतियों का अंतरकाल नहीं है। विशेषार्थ, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अंतर एक समय तथा अनंतानुबंधी के जघन्य अंतर अंतर्मूर्त का कथन जिस प्रकार पहले कर आए हैं उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिए। ये विसंयोजना की और अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ तो अंतर एक अंतर्मूर्त का घटित हुआ, तथा छह प्रकृतियों का उत्कृष्ट अंतरकाल तीन अशुभ लेशाओं में नरक गति की अपेक्षा, यानी कृष्ण में वो सातवें नरक की लेंगे, नील में वो हमने देखा ना 17 सागर और फिर 7 सागर, तीन शुभ म दिख रहा है वो करना उसको, तीन शुभ लेशाओं में देवगति की अपेक्षा कहाँ है। मनुष्य और तिर्यंचों में शुभ और अशुभ भी पलटती रहती है परंतु अंतर्मूर्त से एक लेशा नहीं रहती। देवों में जितनी अपनी आयु है उतने काल तक वो लेशा कायम रहती है, नरकों में भी उनकी जो अपनी अपनी अशुभ लेशा है वो उतने काल तक कायम रहती है, इसलिए वहां यह अंतर घटित होता है। लेशा नहीं बदलते हुए अंतर चाहिए हमें, इसलिए देवों में और नरकों में ये शुभ और अशुभ की लेशाओं की बात घटित थी, क्योंकि इतने दीर्घ काल तक एक लेशा वहां ही रहती है। अब संगी मार्गणा, सम्यक प्रकृति आदि छह प्रकृतियों का अंतर काल पुरुष वेद के समान है। यहाँ भी संगी जीवों में जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कितने होगा? सौ सागर पृथक संगी में, वो अनंतानुबंधी का, अनंतानुबंधी में वो घटित होगा क्योंकि संगी रहते हुए उसका समय तो बना रहे। आहारक जीवों में, आहारक यानी कौन से लेने हैं? वो रुजु गति उनकी रहेगी। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंगुल के असंख्यातवे भाग है तथा अनंतानुबंधी चतुष्क का अंतरकाल ओघ के समान है, यानी वो आहारक बना रहे और अनंतानुबंधी चतुष्क का अंतरकाल कितना होगा? बोलो। ये वो 132 सागर वाला है, उसका समय तो बना रहना चाहिए ना। तो ये अंगुल का असंख्यात भाग बड़ा है क्या? 132 सागर नहीं समझे, जो अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण काल बताया है उसमें कितना काल जाता है? असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, यानी असंख्यात बार 20 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी वो भी असंख्यात सागर कहो ना, और ये 132 सागर है क्योंकि उसका समय तो बना रहना चाहिए। उतने काल तक अनंतानुबंधी की विषय योजना करने के बाद अंतर कैसे घटित होगा? उसका समय तो बना रहना चाहिए, वो भले आहारक बना रहे परंतु इतने काल के बाद वो वेदक समय तो अधिक नहीं टिकेगा, तो नीचे आएगा, मिथ्या तो में चला जाएगा। आहारक अनाहारक की बात है, आहारक बना रहने का काल ज्यादा है, आहारक यानी वो मुनि की बात नहीं है, आहारक ये योग की बात नहीं चल रही, ये योग मार्ग नाम है, आहारक का योग वाले होते हमने उसमें तो यहाँ लिया था। हाँ 132 कुछ कम करना उसमें से। अब आहार का योग की बात पूछी है तो उसमें अनंतानुबंधी का अंतरकाल कितना होगा? क्यों नहीं होगा? आहार का योग होते हुए अनंतानुबंधी का संयोजन कैसे होगा? फिर मिथ्यात्व में जाना चाहिए, ख्याल में है ना। आहार का योग किसके होता है? मुनियों के होता है, तो मुनि अवस्था चल रही है उनकी, आहार का योग चल रहा है, तब उनके तो अनंतानुबंधी का फिर दोबारा सवाल ही नहीं है उसमें जाने का। विशेषार्थ, संगी जीवों में सम्यक प्रकृति आदि छह प्रकृतियों का अधिक से अधिक अंतरकाल पुरुष वेदियों के ही पाया जाता है, यानी संगी रहते हुए जो अधिक से अधिक अंतर उन्होंने बताया है वो पुरुष वेदियों में ही पाया जाएगा, क्योंकि संगी बना रहे तो जब संगी कहेंगे तो उसमें तीनों वेद वाले आ गए, संगी इतना ही अपना है और फिर उसमें पर्याप्त अपर्याप्त भी आ गए, सब कुछ आ गए, परंतु संगी होते हुए अंतरकाल घटित करना है तो पुरुष वेदी के समान घटित होगा। अतः संगी मार्गणा में पुरुष वेद के सम्मान ससान हुआ है, सम्मान अंतरकाल कहा। आहारक जीव का सर्वदा आहारक रहते हुए निरंतर उत्पन्न होने का काल अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण तथा आहारक, आहारक है ना, आहारक वो जीव भी बराबर करना, वैसे दिख नहीं रहा। तथा इतने काल तक आहारक जीव निरंतर मिथ्यात्व में भी रह सकता है, इसलिए इसके सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतरकाल अंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण कहा। वो तो घटित होता है ना, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन तक रह सकता है, तो इसकी क्या बात है। तथा सामान्य से अनंतानुबंधी चतुष्क का जो उत्कृष्ट अंतरकाल कहा है वह आहारक जीव के बन जाता है, इसलिए इसके अनंतानुबंधी चतुष्क का उत्कृष्ट अंतरकाल ओग के समान कहा है, यानी वो कुछ कम 132 साल, उतने काल तक वो आहारक रह सकता है। उक्त छह प्रकृतियों के जघन्य अंतरकाल का कथन सुगम है, यानी क्योंकि वो संगी भले स्त्री में था और बाद में वो पुरुष में चला जाएगा, फिर वो संगी है, इसलिए वो तो उसका पुरुष वेद के समान अंतर्गत होता है। सन्निकर्ष अनुयोग द्वार, अभी सन्निकर्ष ने वो एक साथ कौन कौन सी बातें होती उसकी बात यहां बताएंगे। सन्निकर्ष अनुयोग द्वार ओवर आदेश के भेद से दो प्रकार का है, उनमें से ओग की अपेक्षा जो जीव मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है वह सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाला कदाचित है और कदाचित नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? जिसके मिथ्यात्व की सत्ता है उसके सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता होने ही चाहिए, ऐसा कोई नियम है? कहते अनादि से तो नहीं था ना, अकेला मिथ्यात्व ही था, और कब नहीं होगी? मिथ्या सम्यक को प्राप्त होने के बाद जब मिथ्यात्व में जाता है उद्वेलना कर देता है तब भी वो नष्ट हो जाती है, यानी वो विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। वैसे मिथ्यात्व की सत्ता तो है और अनंतानुबंधी की सत्ता है भी और नहीं भी है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? विषय योजना करता है तो मिथ्यात्व की तो सत्ता है, उदय की बात नहीं है, मिथ्यात्व की तो सत्ता है, अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं है, क्योंकि विषय योजन कर दिया है। और सत्ता वाले वो तो अनादि से था ही और संयोजना होने के बाद फिर दोबारा हो जाती है, इसलिए कदाचित वो विभक्ति वाला है और नहीं। ये कॉम्बिनेशन बताते मिथ्यात्व के साथ कौन कौन सी प्रकृतियों की सत्ता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। अब अन्य जहां मिथ्यात्व है वहां अन्य सभी प्रकृतियां होगी ही, ऐसा है का नहीं है? होगी ही, परंतु उसके 12 कषाय और 9 कषाय की विभक्ति नियम से है। जो जीव सम्यक प्रकृति की विभक्ति वाला है, अभी जिसके सम्यक प्रकृति की सत्ता है उसको मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व होगा कि नहीं होगा? होगा भी और नहीं भी होगा। नहीं भी होगा कब होगा? सम्यक प्रकृति की सत्ता है और मिथ्यात्व और मिथ्यात्व की सत्ता नहीं है, ऐसा कब होगा? कृतकृत्य वेदक बात, जिसने मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का क्षय कर दिया है। तो कहते हैं जो सम्यक प्रकृति की विभक्ति वाला है वह मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी भी उसके पहले पहले चला जाएगा, उसके विभक्ति वाला कदाचित है और कदाचित नहीं है। तो नहीं है जब कहते हैं तो वो कृतकृत्य वेदक। परंतु इसके शेष प्रकृतियों की विभक्ति नियम से है, कृतकृत्य वेदक भी क्यों न हो, तो उसके तो अन्य प्रकृति तो है ही सभी सत्ता में, क्योंकि उसका क्षय तो आगे चलकर हो जाता है 9वें गुण स्थान में। सम्यक प्रकृति के समान सम्यक मिथ्यात्व का कथन करना चाहिए, इतनी विशेषता है कि सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति वाले के सम्यक प्रकृति के 2 भंग है। देखो सम्यक प्रकृति जिसके है, सम्यक मिथ्यात्व की बात चल रही है, जो सम्यक मिथ्यात्व वाला जीव है उसके सम्यक प्रकृति होगी ही कि नहीं भी होगी? होगी ही। आप क्या कहते हैं अशोक भाई? होगी। आप सम्यक मिथ्यात्व तो है और सम्यक प्रकृति नहीं है, ऐसा कोई जीव होगा कि नहीं होगा? तीसरे गुणस्थान में तो सभी सत्ता, सत्ता तो सभी सत्ता की बात चल रही है। पढ़ लिया क्या? हाँ बोलो। پڑھ کے بولو لکھیے نا. اچھا لکھیے تو ہو سکتا ہے, تو کب ہوگا بولو. ابھی ادویلنا کس کی پہلے پوری ہوتی ہے؟ ادویلنا ہوتے سمے کیا ہوتا ہے؟ سمیک پرکرتی پہلے ادویلت ہو جائے گی اور انتم انتر مورت میں سمیک متھیاتو کی ادویلنا ہوگی. اور جب کھے ہوتا ہے تو سمیک متھیاتو کا پہلے کھے ہوگا اور بعد میں سمیک پرکرتی کا ادویلنا ملے گا. یہاں کیا لکھا دیکھو, اتنی وشیشتا ہے کہ سمیک متھیاتو کی وبھکتی والے کے سمیک پرکرتی کے دو بھنگ ہیں, ارتھات وہ کداچت سمیک پرکرتی کی وبھکتی والا ہے اور کداچت نہیں ہے. ایک ہے کشے کی اپیکشا, تو کشے کی اپیکشا جہاں سمیک متھیاتو ہے وہاں سمیک پرکرتی تو ہے ہی ہے, کیونکہ پہلے اس کا کشے ہوگا. ادویلنا میں پہلے سمیک پرکرتی کی ادویلنا ہو جائے گی اور بعد میں اس کی ہوگی. جو کوئی انترمورت کا جو کوئی فرق پڑے گا تو اس میں پڑے گا. اب آگے چل رہے ہیں, یہاں تو انہوں نے کچھ لکھا نہیں ہے, پھر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں نا اس کو. ادویلنا کی اپیکشا ادویلنا ہوگی تو پہلے سمیک پرکرتی نشٹ ہوئی ہے, اب دو ہی ہے سمیک متھیاتو اور سمیک متھیاتو, اور اس کے انت کی اور بڑھ رہا ہے, وہ ادویلنا کی اور بڑھ رہا ہے. انترمورت میں اس کی بھی ادویلنا پوری ہونے والی ہے, پرنتو ایسی پوزیشن ہے نا کہ اس کی ستا مٹ گئی ہے اور اکیلے سمیک متھیاتو اور متھیاتو ہے. جو جیو انتانوبندھی کرودھ کی وبھکتی والا ہے وہ سمیک پرکرتی اور سمیک متھیاتو کی وبھکتی والا کداچت ہے کداچت نہیں ہے. کداچت ہے والا انتانوبندھی کی ستا ہے اور سمیک پرکرتی اور سمیک متھیاتو کی ستا ہے بھی اور نہیں بھی ہے. یہاں انتانوبندھی کی وبھکتی والا ہے. وبھکتی والا ہے کب تک کہیں گے ہم؟ جس نے وسنیوجنا نہیں کی ہے, ایک سے سات گنستان تک وبھکتی والا ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں, اور کداچت نہیں بھی ہے. انتانوبندھی کی ستا ہے اور جس نے وہ بھی ادویلنا کی ہے یا ابھی اس نے سمے کو ہی نہیں پراپت کیا ہے, ایسا جیو لینا ہے. تتھا اس کے شیش پرکرتیوں کی وبھکتی نیم سے ہے. اسی پرکار یہ سمجھ میں آیا دوبارہ, انتانوبندھی کی ستا ہے اور سمیک پرکرتی اور سمیک متھیاتو کی ستا نہیں ہے, ایسا کون سا جیو آپ کو پتا ہے؟ انادی متھیا درشٹی, اس کے تو ستا میں وہ نہیں ہے. اور بھی کب ہو سکتا ہے ایسا کہ پہلے اس کی ستا میں ہے, ایسا کب ہوگا؟ سمیک کو پراپت کرنے پر, کون سا بھی ہو, یہ ویدک ہو یا اوپشمک ہو, تو اس نے سمیک کو پراپت کر لیا ہے تو دونوں کی ستا ہے, بس اتنا ہی لینا. پھر گیا متھیاتو میں, ادویلنا پوری ہو گئی, پھر وہ ستا سے رہت ہو گیا. پرنتو سمیک تو بنا رہے اور انتانوبندھی کی تو ستا ہے اور سمیک پرکرتی کی اس کی ستا نہیں, ایسا کبھی ہوگا؟ سمیک تو بنا رہے اور انتانوبندھی کی تو ستا ہے اور سمیک پرکرتی کی سمیک متھیاتو کی نہیں ہے, ایسا کبھی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ایسا نہیں بن سکتا. الٹا تو بن سکتا ہے کہ سمیک پرکرتی ہے اور انتانوبندھی نہیں ہے, ایسا تو بنے گا کیونکہ اس نے بھی سنیوجنا کر دیا. اسی پرکار انتانوبندھی مان مایا اور لوبھ کی اپیکشا بھی کتھن کرنا چاہیے. جو جیو اپرتیاخیانورن کرودھ کی وبھکتی والا ہے, جس کے اپرتیاخیانورن ہے, وہ متھیاتو سمیک پرکرتی سمیک متھیاتو اور انتانوبندھی چتشک کی وبھکتی والا کداچت ہے اور کداچت نہیں ہے. کداچت ہے میں, ہاں بھی وہ متھیاتوادی کا کشے نہیں کیا ہے اس نے تو ہے, اور کداچت نہیں ہے یعنی اکشائک سمے درشٹی ہوا ہے تو اس کی تو ستا نہیں اس کی, اور ابھی اس کا کشے نہیں ہوا ہے وہ پرتیہ کہنا تھا. پرنتو اس کے شیش پرکرتیوں کی وبھکتی نیم سے ہے. اسی پرکار شیش سات کشائم کی اپیکشا کتن کرنا چاہیے, کیونکہ وہ آٹھ کشائم کا ایک ساتھ ناش ہوتا ہے, اس لیے ان سات انیہ جو سات ہیں وہ پرتیہ کہنا. اور کون سا والا ہاں, اور پرتیہ کھان میں متھیاتو کے لیے کداچت ہے تو انادی یا سادی دونوں لے سکتے ہیں. سمیک پرکرتی اور سمیک متھیاتو کے لیے وہ سادی متھیا درشٹی یا اس کے تو اوپر کے بھی لے سکتے ہیں, جب تک ان کا شائک سمیک درشٹی نہیں ہوا ہے ایسا سمیک درشٹی بھی ہو سکتا ہے. ساتھ میں بھی لے لو, الگ الگ لے لو, الگ الگ. کیونکہ انت انوبندھی چترشکتی وبھکتی والا کداچت نہیں ہے, وہ پرتیاخیان آورن تو ہے سکتا میں, اور اکیلے انت انوبندھی نہیں ہے باقی سب ہے. ایسا کب ہوگا؟ وسنیوجنا کا, اور ایک ساتھ سب کو لینا ہے تو کشائک سمے درشٹی ہوا تب. پرنتو جس کے اپرتیاخیان آورن ہے یا پرتیاخیان آورن ہے اس کے انیہ شیش ہے, یعنی سنجولن اور نو کشائے وہ سب ہے. اسی پرکار شیش سات کشائوں کی اپیکشا کتن کرنا چاہیے, کیونکہ وہ آٹھ کشائوں کا ایک ساتھ وہاں کشے ہو جاتا ہے. جو جیو کرودھ سنجولن کی وبھکتی والا ہے وہ متھیاتو سمیک پرکرتی سمیک متھیاتو انتانوبندھی کرودھ آدی بارہ کشائے, یعنی انتانوبندھی اپرتیاخیان پرتیاخیان اور نو نو کشائوں کی وبھکتی والا کداچت ہے اور کداچت نہیں ہے, کیونکہ باقی جو ہم نیچے کے گنستھان میں ہاں تو اس کی ستا تو ہے, شائک نہیں ہوا ہے, اور یہ باقی سب اس کے ہے. اور نہیں ہے کب کہیں گے؟ کرودھ سنجولن تو ہے اور انیہ سب چلے گئے, ہاں تو اس نے جب کھپنا کر دی ہے اور ابھی کرودھ کی سنجولن کرودھ کی کھپنا باقی ہے. پروشوید تک کے سبھی ہو گئے, یعنی شائک سمے درشٹی ہے, شپک شرینی پر چڑھا ہے, پہلے آٹھ کشایوں کا کشے کر دیا ہے, پھر نپوسک وید, استری وید, چھ نو کشائے, پروشوید, اور ابھی اس کے چار کشائے باقی. تو کرودھ سنجولن کو لیا ہے تو اس کے انیہ کی ستا ہے بھی اور نہیں بھی ہے, دونوں وکلپ گھٹت ہو گئے. پرنتو وہ سنجولن مان آدی شیش تین پرکرتیوں کی وبھکتی والا نیم سے, جس کے ستا میں سنجولن کرودھ ہے اس کے مان مایا لوگ ہے ہی ہے سنجولن, کیونکہ کشے ہونے کا کرم ایسا ہی ہے, پہلے کرودھ کا پھر مان کا پھر مایا کا پھر لوگ. جو جیو مان سنجولن کی وبھکتی والا ہے وہ مایا اور لوگ سنجولن کی وبھکتی والا نیم سے ہے, پرنتو شیش پرکرتیوں کی وبھکتی والا کداچت ہے اور کداچت نہیں ہے. کتنے پرکرتیوں کا کشے یا وسنیو جو کچھ کر دیا ہے اس کی اپیکشا وہ وبھکتی والا ہے یا نہیں ہے کہیں گے. جو جیو مایا سنجولن کی وبھکتی والا ہے وہ لوبھ سنجولن کی وبھکتی والا نیم سے ہے, پرنتو شیش پرکرتیوں کی وبھکتی والا کداچت ہے اور کداچت نہیں ہے. اس کے جو جس پوزیشن پر جتنا وہ کشے ہو سکتا ہے, جو کچھ بدویلنا ہو سکتی ہے, اس اپیکشا سے اس کو کہیں گے. جو جیو لوبھ سنجولن کی وبھکتی والا ہے وہ اپنے سے پہلے کی سبھی پرکرتیوں کی وبھکتی والا کداچت ہے اور کداچت نہیں ہے. اب یہ سنجولن سبھی بتا دیا انہوں نے. جو جیو استری وید کی وبھکتی والا ہے, وبھکتی نے یہاں ادے کی اپیکشا نہیں لینا, ستا میں ہی لینا ہے, تو جس نے بھی استری وید کی کھپنا نہیں کی ہے اس کے نیم سے کیا کیا ہوگا؟ ہاں چھ نو کشائے, پروش وید اور چار سنجولن, وہ تو نیم سے ہوگی ہی, وبھکتی والا نیم سے ہے. پرنتو شیش सोलह प्रकृतियों की विभक्ति वाला कदाचित है और कदाचित नहीं है, क्योंकि नीचे के गुणस्थानों में स्त्री वेद वाला है और बाकी प्रकृतियां भी उसके है। और यदि हम यहाँ लेते हैं कि नपुंसक वेद की भी क्षपणा कर दी है और अभी स्त्री वेद की क्षपणा बाकी है, तो अन्य प्रकृतियों की सत्ता नहीं है ऐसा कहेंगे। यानी क्षायिक समय दृष्टि है तो सात की सत्ता नहीं थी, फिर आठ की उसने क्षय कर दिया, फिर नपुंसक वेद का क्षय कर दिया, पहले सात फिर आठ पंद्रह और एक नपुंसक वेद सोलह, तो स्त्री वेद तो है परंतु वो सोलह नहीं है ऐसा बनेगा। परंतु उसके बाद में क्षपना होने वाले की तो सत्ता रहेगी ही, यानी छह नौकशाएं पुरुष वेद और चार संजीवलन, उसकी तो सत्ता रहेगी। चौथी लाइन, जो जीव नपुंसक वेद की विभक्ति वाला है वह छह नौकशाय पुरुष वेद और चार संजीवलन कषाय की विभक्ति वाला नियम से है। अब जो स्त्री वेद और नपुंसक वेद के सहित उदय के सहित चढ़ने वाला पहले स्त्री वेद की क्षपना करता है, परंतु जो स्त्री वेद की उदय सहित चढ़ता है उसको नपुंसक वेद का पहले हो जाता है, स्त्री वेद और पुरुष वेद का, इसलिए इसके लिए उसको है भी और नहीं भी में ले लिया। फिर पढ़ते हैं, जो जीव नपुंसक वेद की विभक्ति वाला है वह छह नौ कषाय पुरुष वेद और चार संजीवलन कषाय की विभक्ति वाला नियम से है, तथा शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला कदाचित है कदाचित नहीं। जो जीव पुरुष वेद की विभक्ति वाला है वह चार संजीवलन की विभक्ति वाला नियम से, क्योंकि पहले छह नौ कषाय और दोनों वेद वगैरह क्षय हो जाते हैं और बाद में पुरुष वेद का क्षय होता है, तो पुरुष वेद जहां है अन्य का क्षय कर दिया है, परंतु पुरुष वेद है तो चार संज्वलन है ही है, परंतु शेष तेईस प्रकृतियों की विभक्ति वाला कदाचित है और कदाचित नहीं है। जो जीव हास्य नौ कषाय की विभक्ति वाला है वह पांच नौ कषाय पुरुष वेद और चार संज्वलन की विभक्ति वाला नियम से, वो छह नौ कषाय का एक साथ हो जाता है क्षय, तो अन्य भी है वहां पर, हास्य है यानी अन्य भी वहां पर है, उदय है कि नहीं उसकी बात नहीं है, क्षय कहाँ होता है और उदय कहाँ रुकता है, आठवें में उदय की विच्छित्ति हो जाती है, नवे में उदय नहीं है हास्यादि का, फिर भी क्षय होने का कार्य वहां होता है, सत्ता में पड़े रहते, परंतु शेष प्रकृतियों की विभक्ति वाला वह कदाचित है और कदाचित नहीं है। इसी प्रकार पांच नौकषायों की अपेक्षा कहना चाहिए, किसी भी नौकषाय की बात करो, कौन से हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, जहां एक है वहां अन्य भी है, क्योंकि सबका क्षय एक साथ हो जाएगा, जैसे हम देखते हैं ना पांचों ज्ञानावरण का एक साथ क्षय होता है, वैसे यहाँ छह नौकषायों का एक साथ है, तो जहां हास्य की सत्ता है वहां अन्य पांच की भी है, और वहां उनकी है तो पुरुष वेद भी और चार संज्वलन भी है। यह जो ऊपर ओग प्ररूपणा की है, ये ओग की अपेक्षा ये बात बताई उन्होंने, सन्निकर्ष जो है वो ओग के सामान्य कथन किया, यह जो ऊपर ओग प्ररूपणा की है इसी प्रकार सामान्य और पर्याप्त मनुष्य तथा मनुष्यनी के कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियों में जो नपुंसक वेद की विभक्ति वाला है वह स्त्री वेद की विभक्ति वाला नियम से है। मनुष्यनी किसको कहते हैं, जिसके स्त्री वेद का उदय है उसको मनुष्यनी का भाववेद की बात है, तो जो जब उसके नपुंसक वेद की सत्ता है तो स्त्री वेद वाला क्या करता है, पहले नपुंसक वेद का क्षय करता है, इसलिए मनुष्यनी में ये डिफरेंस होगा, तो उसका उदय स्त्री वेद का है तो पहले नपुंसक वेद का क्षय करेगा, इसलिए उसके सत्ता में नपुंसक वेद होगा भी नहीं भी होगा, परंतु पुरुष वेद वगैरह नौ कषाय वो रहेंगे उसके। पुरुष वेद का छह नौ कषाय के समान कथन करना चाहिए, यानी पुरुष वेद और छह नौ कषाय एक साथ चले जाते हैं, इसलिए उसका उसके समान, तथा पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रस त्रस पर्याप्त पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी काय योगी औदारिक कायोगी लोभ कषाय चक्षु दर्शनी अचक्षु दर्शनी शुक्ल लेशा वाले भव्य संगी और आहारक जीवों के सन्निकर्ष का कथन ओग के समान है। जो हमने अभी अप्लाई किया मनुष्य में, पर्याप्त मनुष्य में भी यही कथन अप्लाई होगा, क्योंकि उनमें ये सारी क्षपणा वगैरह की बात होती है। जब हम कहेंगे पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस त्रस पर्याप्त, पांच मनोयोगी, तो मनुष्यों की अपेक्षा ही ये सारी घटित होती बात है। हाँ, पुरुष पीछे पुरुष हो जाते हैं। विशेषण, मिथ्यात्व गुणस्थान में जिसने सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना नहीं की, उसके 28 प्रकृतियों की सत्ता है, तथा सम्यक्त्व की उद्वेलना करने पर 27 और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करने पर 26 प्रकृतियां सत्ता में रहती है। उस दिन वो जेपी साहब ने पूछा था ना, उनको ये पहरे गुणस्थान की बात बताई थी, कहां कितनी सत्ता हो सकती है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में सत्ता की अपेक्षा 3 विकल्प है। सादी मिथ्या दृष्टि है, जिसने उद्वेलना समाप्त नहीं की है, उसके 28 की सत्ता है। उद्वेलना करते करते सम्यक प्रकृति की उद्वेलना पूरी हुई है, 27 की है। सम्यक मिथ्यात्व की भी उद्वेलना पूरी हुई तो 26 की। अनादि मिथ्या दृष्टि तो 26 वाला था ही। उपशम श्रेणी से उतरे हुए, यहाँ सब स्पष्टता से बता रहे, उपशम श्रेणी से उतरे हुए द्वितीयोपशम सम्य दृष्टि जीव के चौथे से सातवें तक अनंतानुबंधी चतुष्क के बिना 24 प्रकृतियां सत्ता में है। जब उपशम सम्यक्त्व वाला 24 वाला कहते हैं तो ये वाला लेना, द्वितीयोपशम सम्य दृष्टि श्रेणी से उतरा हुआ चौथे तक आता है, उसको लेना, चौथे से सातवें तक। तथा जिस वैदिक समय दृष्टि ने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना कर दी है, उसके भी 24 प्रकृतियों की सत्ता है। उपशम में किसको है, तो द्वितीय उपशम वाले को है, और वेदक ने जिसने विसंयोजना की है, उसके भी 24 की सत्ता है। तथा क्षायिक सम्यक्त्व के सन्मुख हुए वेदक समय दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने पर 24 की, मिथ्यात्व की क्षपणा करने पर 23 की, सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा करने पर 22 की, और सम्यक्त्व की क्षपणा करने पर 21 की सत्ता होती है। देखो, हमने मिथ्यात्व में 28 27 26 देखे, फिर द्वितीय ऑप्शन सम्यक दृष्टि के 24 देखे, फिर वेदक सम्यक दृष्टि की भी 24 होती है, और मिथ्यात्व की क्षपणा करने पर 23 की होती है, सम्यक मिथ्यात्व करने पर 22 होती है, और सम्यक प्रकृति की करने पर 21 होती है। ये क्रम से बता रहे हैं, 28 27 26 24 23 22 21। 25 वाला कोई होगा कि नहीं? नहीं होगा। अनंतर क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए पुरुषवेदी जीव के 21 की सत्ता वाला है। अब ऐसा पुरुषवेदी जीव है, क्रम से पुरुषवेदी जीव में कौन सा क्रम है वो बताते, पुरुषवेदी को क्यों लिया, स्त्रीवेदी का और नपुंसकवेदी का क्रम अलग अलग है इसलिए। तो पुरुषवेदी जीव के क्रम से वो प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान आवरण 8 आठ का एक साथ होता है। फिर नपुसक वेद, उसके बाद स्त्री वेद, हास्यादि 6-9 कषाय, पुरुष वेद, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, और संज्वलन लोभ की क्षपणा करने पर। ये क्रम से जो अभी हमने देखे थे कि 21 वाला था, 8 का क्षय करने पर 13 वाला हुआ, फिर नपुंसक करने पर 12 हुआ, श्रीवेद का क्षय करने पर 11 वाला हुआ, हास्यादि 6-9 कषाय का क्षय करने पर 5 वाला हुआ, पुरुषवेद का क्षय होने पर 4 वाला हुआ, फिर क्रोध के करने पर 3 वाला, फिर 2 वाला, माया के करने पर 1 वाला, और संज्वलन लोभ की क्षपणा करने पर शून्य वाला क्यों नहीं लिया? 13 12 11 5 4 3 2 और एक प्रकृतियों की सत्ता होती है। इतनी विशेषता है कि जो स्त्री वेद के साथ क्षपक श्रेणी चढ़ता है वो स्त्री वाला वो वेलांट के बराबर करता है, वह पुरुष वेद और छह नौकशायन का एक साथ क्षय करता है। ये बात बताना चाहते थे मनुष्यनी में, वो बात बताई थी ना उन्होंने, स्त्री वेद के साथ क्षपक श्रेणी चढ़ता है। देखो ऐसा क्यों, उसका उसका कारण क्या है? पुरुष वेदी तो पहले नौकशाय का और फिर पुरुष वेद का क्षय करता है, और स्त्री वेदी साथ में, ऐसा क्यों? ये पार्शल
पुरुष वेद का उदय है।
देखो ऐसा है ना, जहाँ पुरुष वेद का उदय है वहाँ पुरुष वेद का बंध भी चल रहा है, तो वो नवक समय प्रबद्ध वहाँ बाकी है अंदर पड़ा हुआ, और स्त्री वेद का उदय पहले मिट जाता है तो वहां किसका बंध है? जहां स्त्री वेद का उदय है वहां बंध किसका है? पुरुष वेद का ही है। स्त्री वेद के बंध की विच्छित्ति कहां होती है? आप गति की अपेक्षा कोई, आप स्त्रीवेद में क्यों बंद? स्त्रीवेद के बंद की विच्छित्ति दूसरे गुणस्थान में ही होती, वहाँ कोई गति की अपेक्षा नहीं। तो जो स्त्रीवेद सहित भी क्षपणा करे उस जीव को तो पुरुषवेद का ही बंद हो रहा है, दूसरे गुणस्थान के ऊपर किसी भी जीव को जो वेदों का वो बंद भी हो रहा है। बंध कहाँ तक है पुरुष वेद का? नवे के सवेद भाग तक बंद है। तो अभी कोई भी जीव तीसरा चौथा या ऊपर का गुणस्थान वाला है उसको पुरुष वेद का ही बंद हो रहा है।
उदय नहीं
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वेद का उदय है तब तक ही वेद का बंद है, बिना उदय के बंद नहीं होगा। मोहिनी की ये बात ख्याल, तो वहाँ स्त्री वेदी के उसका उदय मिट गया, तो उसका जो नया बंध हुआ था उसकी क्षपणा वो छह नौकशाय के साथ हो जाती है, परंतु पुरुष वेद का उदय लंबे काल तक चला, तो जब तक उसका उदय चल रहा तब तक छह नौकशाय की क्षपणा होती रही, और पुरुष वेद का जो नवक समय प्रबद्ध है जो नया बंधा हुआ, क्योंकि बंधावली में तो कुछ हो नहीं सकता उसका क्षपणा वगैरह, तो बाद में इसकी क्षमा होती है उदय मिटने पर। इसलिए स्त्रीवेद के साथ उदय उदय के साथ श्रेणी चढ़ने वाले के पुरुष वेद और छह नौकशाय का एक साथ होता है, और जो पुरुष वेद सही चढ़ता है वो पहले छह नौकशाय की क्षपणा पूरी होती है, और बाद में जो नया बंधा हुआ है उसका भी क्षपणा चलती है। मेरे ख्याल से ये पढ़ने के बाद वो क्षपणा सारा आसान हो जाएगा। जब हमने क्षपणा हमने दोनों ने पढ़ा था, जस्ट पढ़ते गए थे, कुछ समझ में नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं, तब तक तो कुछ अक्कल भी नहीं थी तभी। अतः उसके पांच प्राकृतिक स्थान नहीं होता। क्या कहा? पुरुष वेदी के जो पांच प्राकृतिक स्थान कहा था वह पांच वाला स्थान स्त्री वेदी के नहीं होता। तो स्त्री वेदी में क्या होगा? पहले वो औपचारिक समय दृष्टि था, 21 की सत्ता थी, 21 के बाद 8 कम हुए 13 के हुए, फिर उसने एक स्त्री वेदी है नपुसक वेद का क्षय कर दिया, तो 12 का हुआ, स्त्री वेद का भी कर दिया तो 11 का हुआ, 11 का हुआ एकदम उसने छह नौकशार पुरुष वेद एक साथ क्षय हो जाएगा, तो पांच वाला नहीं रहेगा, चार वाला हो जाएगा एक साथ। इसलिए स्त्री वेदी के वो पांच वाला स्थान नहीं होगा, ये बात यहां बतानी है। इस प्रकार इन नियमों को ध्यान में रखकर, पहले भी यहां लिखा था ना, त्रिवेदी की विभक्ति वाला क्या होता है वगैरह वगैरह। इन नियमों को ध्यान में रखकर ओघ और आदेश से कहे गए सन्निकर्ष का विचार करना चाहिए। ओघ में तो सामान्य से बता दिया और आदेश में जो स्त्रीवेद की अलग से जो कुछ उसमें विशेषता है वो यहाँ बता दी। इससे यह जानने में देरी न लगेगी कि किन प्रकृतियों के रहते हुए किन प्रकृतियों की सत्ता है ही और किन प्रकृतियों की सत्ता है भी और नहीं भी है। है ही में उसके बाद में एक सपना होने वालों को हम है ही कहेंगे और है भी और नहीं भी में उसके पहले जो उसकी सपना होती है बाद में और उसके पहले क्षय होने वाले के उसके लिए हम है भी और नहीं भी ये दोनों भी लगा सकते। उदाहरणार्थ संज्वलन लोभ संज्वलन की विभक्ति वाले के शेष 27 प्रकृतियां होगी और नहीं भी होगी क्योंकि आखिर में क्षय होने वाला लोभ है। अन्य 27 होगी भी नहीं भी होगी। नहीं भी होगी कौन 27 की 27 नहीं है क्योंकि सबकी क्षपना हो चुकी है और 10वें गुणस्थान तो अकेले लोभ की सत्ता है बाकी किसी की नहीं है क्योंकि लोभ संज्वलन का सत्व क्षय यानी सत्ता का क्षय सबके अंत में होता है पर मान संज्वलन की विभक्ति वाले के लोभ संज्वलन अवश्य होगा यानी जहां मान की सत्ता है वहां लोभ की है ही है क्योंकि मान संज्वलन का सत्वक्षय लोभ संज्वलन के पहले हो जाता है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना। अब आदेश निर्देश की अपेक्षा ये तो अभी भी ओघ की बात चल रही थी और ओघ में जहां वेदों में जो कोई डिफरेंस है वो बता दिया था। पहले तो ओघ में जनरल कथन कर दिया और ओघ की अपेक्षा यानी ओघ ने वेद की अपेक्षा जो डिफरेंस है वो भी बता दिया। क्रोध के साथ शपथ श्रेणी चढ़ेगा मान माया और लोभ का बंद होगा। क्रोध की क्षपना होने के बाद क्रोध का बंध रुक जाता है मान का उदय हो जाता है। क्रोध के उदय सहित चढ़ने वाले के जहाँ क्रोध का यानी वो क्रोध का बंध उसका रुक जाता है परंतु उसका क्रोध का भी जो कोई नवक समय प्रबद्ध है वो फिर मान रूप होकर उदय में आता है और फिर उसका क्षय हो जाता है। मान का माया रूप होना ही उसका क्षय है। वो क्षय किस विधि से होता है वो प्रोसेस अलग है उसकी बात हमको नहीं करनी है। तो क्रोध का क्षय पहले हो जाता है फिर मान का होता है क्योंकि उदय क्रोध का था अभी उसने क्षपणा कर दी क्रोध की अब क्या है वो मान रूप से मान का उदय चलेगा क्योंकि परमाणु तो सभी पड़े हैं अंदर। फिर माया का उदय होगा फिर लोभ का। कोई जीव ऐसा है कि लोभ के उदय के साथ ही श्रेणी चढ़ता है पहले से ही तो सत्ता में पड़े हुए क्रोध के परमाणु मान रूप होते हैं मान के माया रूप होते हैं माया के लोभ रूप होते हैं फिर भी इसका उदय लोभ का ही चलता है शुरू से। फिर भी उस पोजिशन तक वो क्रोध का बंध जहां तक क्रोध का बंध है वहां क्रोध मान माया लोभ चारों का बंध होता है। उदय भले क्रोध मान माया लोभ किसी में से भी चले तो उसका क्रोध का बंध रुक गया मान माया लोभ का चलता रहेगा फिर मान का रुक जाएगा माया और लोभ का होता रहेगा फिर माया का भी रुकेगा अकेला लोभ का बंध होगा। कहां पर 9वें गुणस्थान के अंत में 10वें में किसका बंध होगा हाँ मोहिनी में किसी का बंध नहीं होगा अन्य ज्ञानावरण आदि बनते उसकी बात नहीं है। अब आदेश अभी गतियों में वगैरह बताएंगे। आदेश निर्देश की अपेक्षा नरक गति में नारकियों में जो जीव मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है उसके सब प्रकृतियों का कथन ओग के समान है। ओग के समान यानी सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी उसकी सत्ता होगी भी और नहीं भी होगी क्योंकि नरक में भी वो क्षायिक समय नहीं मिथ्यात्व की सत्ता वाला लिया तो होगी में वो उसने समय को प्राप्त कर भी लिया और विसंजना नहीं किया ऐसा जीव लेना या अलग अलग भी हम कंसीडर कर सकते। नहीं भी होगी मैंने समय प्रकृति समय मिथ्या तो मैं उद्वेलना वाला लेना अनंतानुबंधी की नहीं भी मैं वो विसंयोजना करूँ परंतु कहीं भी वो क्षय का कार्य तो यहाँ होगा ही नहीं तो अन्य प्रकृतियों तो नियम से इसके होगी ही मिथ्यात्व जहाँ है वहां तो अन्य होती ही होती है, तो इसलिए ओग के समान बताए। इसी प्रकार यानी मिथ्यात्व के साथ सब प्रकृति में सम्यक प्रकृति की अपेक्षा ओग के समान कथन करना चाहिए। जो जीव सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है वह मिथ्यात्व बारह कषाय और नौ कषायम की विभक्ति वाला नियम से है, किंतु सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है। अकेले सम्यक मिथ्यात्व को कंसिडर करना है तो सम्यक मिथ्यात्व की तो सत्ता है और सम्यक प्रकृति की सत्ता नहीं है, ऐसा कब होगा? उद्वेलना की अपेक्षा ऐसा होगा क्या कि सम्यक प्रकृति की तो सत्ता है, नहीं उल्टा, कृतकृत्य वेद वाला भी हाँ अनंत अनुबंधी की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है, ये कैसे लेना? सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है और विसंयोजना की, अनंत अनुबंधी की सत्ता नहीं है, विसंयोजना वाला नहीं, कृतकृत्य नहीं लेना क्योंकि वहां सम्यक मिथ्यात्व है ही नहीं। हमें सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाला जीव लेना है, सम्यक मिथ्यात्व यहाँ लिखा ना तीसरे लाइन में, जो जीव सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति वाला है वह तो मिथ्यात्व बारह कषाय नौ कषाय की तो नियम से है, परंतु सम्यक प्रकृति की यानी सम्यक मिथ्यात्व है और सम्यक प्रकृति नहीं है, ऐसा कब होगा? उद्वेलना करते करते आया। और अनंतानुबंधी की अलग अलग लेना, एक ही जीव में दोनों को नहीं घटाना। कृतकृत्य वेदक वहाँ जन्म नहीं वाला, पहले नरक
दूसरी तो सब प्रकृति है,
पहले नरक का नरक की जो है कृतकृत्य वेदक के साथ वहाँ जन्म नहीं वाला, वही तो नहीं है वाला ही आपको लेना है ना। वह आपने क्या पूछा था? सम्यक प्रकृति की है और अन्य की नहीं है,
पहले नरक जो होगा बाकी के नरक में,
बाकी के नरक में नहीं हो सकता, कृतकृत्य वेदक वाला पहले में ही जन्म सकता है, सम्यक के साथ वहाँ आया है, या तो क्षायिक होकर आएगा या कृतकृत्य अवस्था में आएगा। अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा ओग के समान कथन है, यानी अनंतानुबंधी की जिसको सत्ता है, अनंतानुबंधी की तो है और मिथ्यात्व की नहीं है, ऐसा कभी होगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। अनंतानुबंधी की है और सम्यक प्रकृति की नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व की नहीं, उद्वेलना करने वाला या अनादि का भी ले सकते। जो नारकी अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की विभक्ति वाला है, जिसके अप्रत्याख्यानावरण है, इसको ऊपर के तो सभी है ही है परंतु अप्रत्याख्यानावरण है और मिथ्या तो अनंतानुबंधी वो समय पृथ्वी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? शायद। तो जो नारकी अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की विभक्ति वाला है वह मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाला है भी और नहीं भी है, वो नहीं भी है में शायक लेना, किंतु वह शेष 20 प्रकृतियों की विभक्ति वाला नियम से है। बीस क्यों लिए यहाँ पर? अप्रत्याख्यान क्रोध की बात कर रहे थे तो कितने बचे अभी? 21 में से एक लिया ना यहाँ पर, हमेशा हम 21 की बात करते हैं, अनंतानुबंधी की बात है, तब यहाँ चार में से एक को अलग किया है, इसलिए बाकी तीन फिर प्रत्याख्यान और चार संज्वलन चार 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 आठ और तीन 11 ये हो गए, और वो नौ कषाय वो 20 हो गए। वो प्रत्याख्यान आवरण क्रोध के समान शेष 11 कषायों और 9 कषायों की अपेक्षा कथन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकृति का क्षय तो यहाँ कोई है, होता ही नहीं है, तो जहाँ एक है वहाँ अन्य सभी है वहाँ। इसी प्रकार पहली पृथ्वी तिर्यंच गति, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त सामान्य देव, सौधर्म स्वर्ग से लेकर उपरिम ग्रेवे तक के देव। देखो ये जो लिस्ट बता रहे है, ये है भी और नहीं भी हो सकता है, ये तो जहाँ क्षायिक समय तो हो सकता है उसकी बात भी है, इसलिए भी ये लिस्ट पढ़ना भी उस अपेक्षा जहाँ क्षायिक समय दृष्टि उत्पन्न हो सकता है। तो पहली पृथ्वी लिया, तिर्यंच गति वहां भी है भी और नहीं भी है, ये उस अपेक्षा से, क्षायिक की अपेक्षा से। पंचेन्द्रिय तिर्यंच भी उसी अपेक्षा से, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त सामान्य देव, सौधर्म स्वर्ग से लेकर उपरिम ग्रेवे तक के देव। है भी और नहीं भी ऐसे दोनों लेना है ना। औदारिक मिश्र का योगी, वैक्रिक मिश्र का योगी, क्योंकि उस मिश्र अवस्था में वहां वो क्षायिक के साथ आए हैं, ऐसा लेना है। यानी क्षायिक वाले मरकर मनुष्य में आएंगे तो औदारिक मिश्र में आएंगे, और मनुष्य मरकर देवों में जाएंगे या पहले नरक में जाएंगे, तो वैक्रिक मिश्र होगा। कार्मण का योगी, वहां जाते हुए कार्मण का योग में भी वही अवस्था बनी हुई। असंयत कृष्ण आदि तीन लेशा वाले, एक उसकी बात चल रही थी, वो प्रत्याख्यान की विभक्ति है और अन्य की विभक्ति है भी और नहीं भी है। ये दोनों पॉसिबिलिटी जहाँ है वहां की बात, इसलिए ग्रहवेग तक को लिया था ना, उपरिम ग्रहवेग तक है भी और नहीं भी में उसको लिया था। खाली तीन लेशा लेने का कारण आप पूछ रहे हैं ना, कृष्ण आदि तीन लेशा वाले और अनाहारक जीवों के कहना चाहिए। एक समय दृष्टि के नहीं होती, शेष के यथासंभव विकल्प जानना। ये जो क्षायिक समय दृष्टि है नहीं है और नहीं है दोनों जिसमें घटित करना है, इसलिए नरकों में से कृष्ण लेशा तो नीचे के नरक में है, पहले नरक में तो कपोत लेशा है। क्षायिक इसीलिए देखो क्या कहते हैं, जहाँ अप्रत्याख्यानावरण क्रोध है, परंतु कृष्ण आदि तीन लेशा यहाँ हो सकती है ना जीव को मनुष्य अवस्था में। यहाँ हो सकती है, विशेषार्थ में और क्लियर हो गए, जितना होगा उतना पढ़ेंगे फिर दोबारा ले लेंगे। हाँ याद नहीं रहेगा, पढ़ के आना अभी एक तारीख को। अच्छा विशेषार्थ नारकियों में मिथ्यात्व विभक्ति वाले के अनंतानुबंधी चतुष्क सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व ये चतुष्क के बाद कौमा देना, ये छह प्रकृतियां होती भी और नहीं भी होती, यानी मिथ्यात्व की विभक्ति है और अनंतानुबंधी की नहीं है, ऐसा कब होगा? विसंयोजना वाले सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, या तो अनादि मिथ्यादृष्टि है, उसने उद्वेलना कर दिया, विसंयोजक के यहां लिखा है आगे, अनंतानुबंधी चतुष्क नहीं होती, तथा जिसने सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना कर दी है उसके उक्त दो प्रकृतियां नहीं होती, किंतु इसके शेष सभी प्रकृतियों पर सत्ता है, अन्य प्रकृतियां तो उसके है ही है, मिथ्यात्व के साथ अन्य है। जो सम्यक प्रकृति की विभक्ति वाला है उसके मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क ये छह प्रकृतियां होती है और नहीं भी होती, नहीं भी होती में कृतकृत्य लेना। जो कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि नरक में उत्पन्न हुआ है उसके उक्त छह का सत्व नहीं होता, तथा जिस वेदक समय दृष्टि ने चार अनंतानुबंधी की विषय योजना की है उसके उक्त चार का सत्व नहीं होता, शेष छह का सत्व होता है। ये ख्याल में आया? नहीं नहीं नहीं, वेदक का 66 सागर है, कृतकृत्य वेदक का तो अंतर्मूर्त है। मैंने ऐसा बताया था कि वेदक सम्यक्त्व का जो उत्कृष्ट काल 66 सागर बताया है, तो कृतकृत्य वेदक भी वेदक सम्यक् दृष्टि है, तो कृतकृत्य वेदक का काल गिनकर 66 सागर पूरा होता है। जो मिथ्यात्व में जाने वाला है उसका वो अंतर्मूर्त घटाना पड़ेगा। हाँ होगा, पूरे 66 सागर लिए तो, हाँ पूरा लिया तो, क्योंकि उसमें कृतकृत्य के साथ वाला वो पूरा वेदक काल गिना है 66 सागर, उसके साथ कम मिथ्यात्व में जाएगा उसमें से, वेदक में से, या अंतर्मूर्त कम काल में वो उत्साही भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा उसका उतना काल बिताना पड़ेगा, कोई वेदक में आया और अंतर्मूर्त में क्षय कर दिया, ऐसा भी हो सकता है, अधिक से अधिक काल हमको गिनना है, शेष का सत्व नियम से। सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति वाले जीव के अनंतानुबंधी चार और सम्यक्त्व ये पांच प्रकृतियां है भी और नहीं भी है, यानी सम्यक तो वो एक साथ नहीं लेना, सम्यक मिथ्या तो है और अनंतानुबंधी नहीं है, ऐसा कब होगा? विषय योजना करने वाले, और सम्यक मिथ्या तो है और सम्यक प्रकृति नहीं है, उद्वेलना। जिसने अनंतानुबंधी की विषय योजना कर दी है उसके अनंतानुबंधी चार नहीं है, और जिसने सम्यक तो की उद्वेलना कर दी है उसके सम्यक तो नहीं है, शेष के ये पांचों प्रकृतियां हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा ओग कथन से कोई विशेषता नहीं है, यानी जिसके अनंतानुबंधी है उसके अन्य है नहीं है, उसकी बात हमने पहले देखी, तथा अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि की विभक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यत्व और अनंतानुबंधी चार ये सात प्रकृतियां होती भी है और नहीं भी होती है, क्षायिक समय दृष्टि के नहीं होती, शेष के यथासंभव विकल्प जानना। जो क्षायिक समय दृष्टि नहीं है उसके उसमें से कितनी है कितनी नहीं उसको बता सकते। ऊपर जो प्रथम नरक के नारकी आदि अन्य मार्गणाएं गिनाई है वहां भी इसी प्रकार समझना। यही रुकेंगे अभी हम, फिर 1 तारीख को मिलेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकान।